पृष्ठ संख्या 93। राकेश के मस्तिष्क में नाटककार की सत्ता का, भूमिका का प्रश्न और निर्देशक के दायित्व का प्रश्न हमेशा रहा। नाटक निर्देशक की कल्पना से, गलत प्रयोग से बिगड़ न जाए, नाटक की आत्मा पर प्रहार न हो, इस दृष्टि से ही शायद राकेश ने अपने नाटकों में इतने पूर्ण रंग निर्देश, रंग चर्याओं का संकेत दिया है कि निर्देशक कभी-कभी गौण लगने लगता है। पात्रों की सारी हरकतों, भाव प्रदर्शन, गतियों के साथ-साथ प्रकाश और संगीत के भी सारे संकेत नाटक में मौजूद हैं। यहाँ तक कि रंग निर्देशों के अंतर्गत प्रतीक भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सारे रंग संकेत हिंदी नाटककार की रंगमंचीय दृष्टि के परिचायक हैं और एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन कलाकृति की दृष्टि से रंग निर्देशों की इतनी पूर्णता विचारणीय हो सकती है। लोगों की प्रतिक्रियाएं आधे अधूरे के मंच निर्देशों को लेकर अलग-अलग हैं। कुछ को लगता है कि नाटककार ने शायद यह अतिरिक्त एहसास कराना चाहा है कि अभिव्यक्ति की हर बारीकी को उसने गिरफ्त में ले रखा है, या इसी तरह यह कि तरह तरह की रंग युक्तियों के द्वारा निर्देशक और अभिनेता का काम अपने हाथ में लाने की प्रवृत्ति इस नाटक में बहुत ही ज्यादा है। अभिनेता की हर गति और रंगचर्या को नाटककार ने निर्धारित कर देना चाहा है, या यह भी कि यद्यपि अपनी प्रस्तुति में निर्देशक नाटक की लय का पुनर्निर्माण करते समय उसे कुछ संभाल सकता है, तब भी इस नाटक में वह अपने हाथ काफी दूर तक बंधे हुए पाएगा। दूसरी ओर निर्देशकों की प्रतिक्रियाएं इससे भिन्न हैं। उसमें से उदाहरण ले लें, आधे अधूरे ने नाटककार और निर्देशक की साझेदारी को उभारा है। एक निर्देशक को नाटककार की शैली ही गुमराह करती है। नाटक में दिए गए संकेतों से नाट्य शैली और नाट्य निर्देशन को इतने निकट ला दिया है कि दोनों एक दूसरे से पूरक बन गए हैं। नाटककार द्वारा दिए गए मंच निर्देशों से निर्देशक की स्वतंत्र कल्पना का विकास होता है और ऊपर कहे गए दोनों विचार अपनी जगह नहीं हैं। एक ओर श्रेष्ठ नाट्य कृति में नाटककार द्वारा ही सब कुछ निर्धारित होना बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। वह अभिनेताओं निर्देशकों की कल्पना को जितना ही उत्साहित करे अच्छा है। दूसरी ओर इस सीमा निर्धारण का मुख्य कारण हिंदी नाटक और हिंदी रंगमंच के अधकचरे रूप का पृष्ठभूमि में होना है। संदर्भ 1, नटरंग, संयुक्तांक 10-11, कॉमा शोभना भूटानी, पृष्ठ संख्या 55। 2, नटरंग 21, मोहन राकेश के नाटक, नेमी चंद्र जैन, पृष्ठ संख्या 39-40। 3, नटरंग संयुक्तांक 10-11, रंग आधुनिकता आयाम की खोज, कुंवर जी अग्रवाल, पृष्ठ संख्या 5। 4, विश्व मानव देवलिया, नटरंग 21, पृष्ठ संख्या 23। पृष्ठ संख्या 94। जिस रंगमंच पर नाटक का अर्थ से अनर्थ होता रहा हो और नाटक के बारे में नाट्य समीक्षक, निर्देशक, अभिनेता सभी की निश्चित सही मानसिक पृष्ठभूमि न बन पाई हो, वहां राकेश का यह कार्य महत्वपूर्ण है, कुछ माने रखता है। इसके मूल में कारण हिंदी नाटक और रंगमंच का पिछड़ापन ही है और साथ साथ नाटककार की अनिवार्य भूमिका भी अवचेतन में काम कर रही है। यह सत्य भुलाया नहीं जा सकता कि निर्देशक और नाटककार को बहुत करीब लाने की अनवरत कोशिश राकेश और उनके नाटकों में मिलती रही है। इसीलिए एक उत्तम कृति के रूप में यह एक संकट उपस्थित करता है। कलात्मक अभिव्यक्ति का संकट और हिंदी नाटक और रंगमंच के संदर्भ में दिशा निर्देश करते हुए नाटक और रंगमंच की आंतरिक पहचान के लिए उत्प्रेरित करता है। आधे अधूरे के दृश्य बंध का सारा निर्देश इसका उदाहरण है। मध्य वित्तीय स्तर से ढहकर निम्न मध्य वित्तीय स्तर पर आया एक घर, सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला घर, घर में व्यतीत स्तर के टूटते अवशेष किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए, अपनी अपेक्षाओं से नहीं, कमरे की सीमाओं के अनुसार चीजों का आपसी रिश्ता टूटा हुआ, असुविधाओं में सुविधा खोजने की कोशिश, घिसी फटी सिली निरर्थक चीजें, अधटूटा टी सेट, धूल की जमी तह, कोई कह सकता है कि यह नाटक के तनाव भरे अधूरे वातावरण का, अधूरे लोगों का एक पूरा सांकेतिक चित्र नहीं है? क्या यह पूरा दृश्य बताए जाने के बाद भी निर्देशक की सूक्ष्म कल्पना और समझ की मांग नहीं करता? क्योंकि यह ढांचा स्थूल ऊपरी नहीं, अपने अंदर से आज के और नाटक के परिवेश को बताने वाला है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ, घर में भी, लोगों के मन में भी अव्यवस्था, स्थायी तलखी की गंध, सब पात्रों के मन में भी घुटन, कूढ़न, ऊब, विद्रोह, आक्रोश, निश्चय ही पूरे दृश्य विधान से अलंकरण बिल्कुल नहीं है। वह अभिव्यक्ति का पूरा अंग है, कथानक चरित्रों, स्थितियों, संवादों में निरंतर अभिव्यक्त होता हुआ चलता है। पर्दा खुलते ही पहले रंगमंच नाटक का, समकालीनता का बिखराव और टूटन का, संत्रस्त वीरानगी का एहसास कराता है। इसके अलावा खंडहर की आत्मा को व्यक्त करता संगीत भी प्रकाश धुंधला फिर अंधेरा यानी मातमी संगीत मरघट की दम घोटने वाली मनहूसियत को साकार करते हैं। इन संकेतों से कभी कभी और आगे सोचने के लिए मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। नाटक में अंक विधान नहीं है, बल्कि लगातार दो साझों के घटनाक्रम से यह नाटक निर्मित हुआ है। अंक शब्द का प्रयोग न करके प्रथम भाग के अंत में अंतराल विकल्प लिखा गया है। अंतराल दिया भी जा सकता है, नहीं भी। नाटक के मौजूदा रूप में अंतराल आवश्यक लगता है, वैसे निर्देशक की अपनी कल्पनाशीलता विकल्प के बारे में भी सोच सकती है। प्रचलित अंक विधान की रूढ़ि को तोड़कर राकेश ने सूझबूझ का परिचय दिया है। अंक विधान इस नाटक के स्वाभाविक प्रवाह को, नाटकीय वातावरण के तनाव को खंडित करता है। एक ओर यह नाटक की कलान्विति का अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इस तरह राकेश ने दो संध्याओं में ही पूरे काल प्रसार विस्तार को समेट लिया है। अनुभूति की सघनता बनाए रखने में यह सहायक है। पृष्ठ संख्या 95। दूसरी ओर यह अपने आप में एक नाटकीय बिंब भी बन जाता है, क्योंकि जिस दुनिया के आदम के जीवन में काल प्रवाह रुकता नहीं और किसी तरह जिंदगी चलती रहती है, वहां नाटक सम विभाजित होकर क्यों रहे? समीक्षक कुंवर जी अग्रवाल ने इसीलिए शायद यह कहा है कि यहाँ नाटककार की उपलब्धि काल प्रवाह का नाटकीय बिंब उपस्थित करने में है। इस माने में राकेश ने वैधानिक रीति से उतना काम नहीं लिया है जितना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। यह नाटक क्रिया प्रतिक्रियाओं का, तनाव संघर्ष का नाटक है। आरंभ से अंत तक एक सी लय रचना इसे सामान्य हिंदी नाटकों से अलग करती है। स्थितियों का चित्रण उतना नहीं है जितना स्थितियों में उत्तेजित होते हुए पात्रों की झल्लाहट, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अपने अधूरेपन में सभी का व्यक्तित्व एक सा है। असंतोष, कड़वाहट, विद्रोह, झल्लाहट। परिणामतः अन्य नाटकों जैसा उतार चढ़ाव, परिवर्तन, कोमल कठोर क्षण इसमें नहीं है, बल्कि सबकी झल्लाहट और तनाव में, स्वर और बोलने के ढंग में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर पड़ता है केवल सिंघानिया जगमोहन जुनेजा से, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये सब भी परिवार के सदस्यों की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को और उत्तेजित करते हैं, जिससे वातावरण बदलता नहीं, नहीं आता रहता है। इसीलिए पुनरुक्ति एक रस्ता और सपाटपन जैसी बातें कही गई हैं। लगता यह है कि नाटककार ने जानबूझकर ऐसा किया है। आज की मानसिकता और तनाव को दिखाने के लिए ही इस विशिष्ट लय का निर्माण किया है। लेकिन दो बातें सामने आती हैं कि क्या नाटक जैसी विधा में, दर्शक समूह की उपस्थिति से सीधे टकराने वाली विधा में निरंतर एक तनाव की लय रचना होनी चाहिए? आषाढ़ का एक दिन लय विविधता का बड़ा अच्छा उदाहरण है। लहरों के राजहंस में भी बड़े सार्थक उतार चढ़ाव हैं। इसीलिए जिसने अपने दोनों नाटकों में लय निर्माण में सावधानी बरती हो, उसने किसी असमर्थता से आधे अधूरे की रचना की हो, यह सोचना गलत होगा। नाटक और रंगमंच दोनों दृष्टियों से आधे अधूरे में तीखापन और मुखरता बराबर चलती है, और वह निसंदेह सोद्देश्य है। दर्शक वर्ग के सामने एक प्रयोग भी, यह तीखापन और अधिक उभरता अगर कहीं कहीं उसकी विरोधी स्थितियां भी आती, जो नाटक को, पात्रों को सूक्ष्म स्तरों पर ले जाती। पात्रों की दूसरी मनोदशा भी सामने आती है, गहरी करुणा और पीड़ा की, पराजय और निराशा की। समान ताल और लय का नाटक लगते हुए भी इसमें गहरी पकड़ है। दर्शकों को बांधे रखने की क्षमता है, वही ध्यान देने की बात है। राकेश के नाटक कम से कम दर्शक समूह को उपेक्षित करके नहीं लिखे गए हैं। दर्शकों की संवेदन क्षमता को महसूस करते हुए नाट्य रचना की गई है। दर्शकों में ही एक झुंझलाहट पैदा करना लेखक का लक्ष्य हो सकता है। प्रस्तावना के आरंभ में ही काला सूट वाला कहता भी है, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। आदमी की चाहना भी उसे अपने चारों ओर के वातावरण से बचा नहीं सकती। पहले ही कहा गया है कि नाटक में चरित्र ही मुख्य है। कथ्य, घटनाएं, लक्ष्य, कार्य, व्यापारों की विविधता और उनका विकास नहीं। पृष्ठ संख्या 96। चरित्र और संवाद नाटककार राकेश की खास पहचान है। एक ओर पक्ष है नाटक के संगठन का, मुख्यतः उसके आरंभ का या नाटक की प्रस्तावना का। प्रस्तावना में काला सूट वाला आता है, जो नाटक में पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार की भूमिकाएं निभाता है। व्यक्ति वही, केवल वेशभूषा का थोड़ा सा अंश बदल जाता है। प्रस्तावना में कहा गया है, समानता आप में और उसमें, उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। या जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ, वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते हैं। नाटक के अंत में जुनेजा कहता है, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है। सावित्री के अनुभव भी यही होते हैं। ऊपरी चमक दमक अंतर होते हुए भी अंदर के सब समान हैं, अधूरे। सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग-अलग मुखौटे पर चेहरा, चेहरा सबका एक ही। आदमी एक से हैं, मानवीय अनुभव एक से हैं, यह दिखाना इस प्रस्तावना का उद्देश्य है। एक ही व्यक्ति के खंडित या विभाजित रूपों को दिखाना नहीं, लेकिन कहीं कहीं यह भी लगता है कि प्रस्तावना में कही गई बातों का नाटक से पूरा पूरा संबंध नहीं है। जो अन्य बातें कही गई हैं वे यह हैं। सब कुछ अनिश्चित है, नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है, और यही अच्छे नाटक का लक्षण है, अनिश्चित अंत। अनिश्चित होने के कारण कारणों की खोज व्यर्थ है, क्योंकि कोई न कोई कारण होता तो है, लेकिन कारण सापेक्ष होते हैं। अनिश्चित व्यक्ति निश्चित कारण कैसे बता सकता है? आदमी नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। टकराते हैं, अलग हो जाते हैं। आदमी की कोई निश्चित मानसिकता नहीं होती, वह परिस्थितियों के अनुसार, प्रसंगों के अनुसार बदलती रहती है। ऊपर कही गई सारी बातें नाटक में होते हुए भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं करती। महेंद्रनाथ अनिश्चित व्यक्तित्वहीन आदमी है। बाकी सबके व्यक्तित्व तो निश्चित हैं, सभी निश्चित ढंग से प्रतिक्रियाएं करते हैं, अगर नहीं तो केवल इस अर्थ में कि सभी अधूरे हैं। कारणों की खोज नाटक में भी नहीं है, शायद कारण का कोई खास महत्व राकेश की नजर में है भी नहीं। प्रश्नों को तीव्रता के साथ अनुभव किया जा सकता है, उनका समाहार या पूरा उत्तर संभव है आधा अधूरा। इसीलिए नाटक का अंत भी किसी भविष्य के संकेत या समाधान पर नहीं होता। हल न देना नाटक का कोई दोष नहीं है। राकेश के किसी भी नाटक में समाधान भी नहीं गया है। उसकी दृष्टि में सही कारण और हल दोनों ही असंभव हैं। संभव है तो मानवीय द्वंद्व को अनुभव करना और कराना। नाटक में उनके पात्र ही विघटन का अनुभव करते हैं, पर क्यों का कोई उत्तर उनके पास नहीं है। यह समझते हुए भी कि कोई खास वजह होनी चाहिए, बिन्नी कहती है, वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। पृष्ठ संख्या 97। पुरुष एक इस वजह पर चौंकता भी है और निराशा भाव से कहता है, यह वजह बताई है इसने हवा, या कैसे कहता है यह, मैं सचमुच सचमुच जानती हूँ क्या मैं। यानी आदमी समझता है कि कारण कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन कोई कारण स्पष्ट बता नहीं पाता, बताए गए कारण से संतुष्ट भी नहीं हो पाता। कोई नहीं जानता कि क्या चीज है जो इस घर को खाए जा रही है। हर आदमी अपने को नहीं दूसरे को उत्तरदायी समझता है। सारे संघर्ष का कारण यही है। हम अपेक्षा करते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते या कर पाते। कारण की खोज बेकार दिखाने के लिए ही ब्रैकेट में पृष्ठ संख्या 69 पर ब्रैकेट क्लोज बिन्नी और अशोक की बातचीत में घर के अंदर एक खास चीज के प्रसंग को देर तक दोहराया गया है। कौन सी चीज है वह का उत्तर, स्पष्ट उत्तर कोई नहीं है। बहुत सी उलझने अकारण होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। राकेश का स्वभाव यहाँ प्रतिबिंबित होता है, लेकिन मैं कौन हूँ प्रश्न का सामना महेंद्रनाथ को छोड़कर दूसरा कोई नहीं करता, और न किसी और ने इस प्रश्न का सामना करना छोड़ दिया है। परिस्थितियां बदल जाती तो भी मैं यही रहता, यह सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदलने से आदमी में ऊपरी परिवर्तन होता है, जो स्थायी नहीं होता। उसके ऊपरी अनुभव और प्रश्न भी बदलते हैं। नहीं बदलता है तो केवल अंतर का यह प्रश्न कि व्यक्ति कौन है, क्यों है, संसार में अकेला क्यों है, अधूरा क्यों है। बात भावुकता और दार्शनिकता में लिपटी नजर आने लगती है। जाहिर है कि ये प्रश्न नाटक में उभरे नहीं हैं, बल्कि पारिवारिक समस्या में दब कर रह गए हैं। इसीलिए प्रस्तावना महान लगती है, नाटक उसके आगे छोटा, सीमित, कथित बात से उल्टा ही संकेत नाटक देता लगता है कि आर्थिक परिस्थितियां सुधरते या भिन्न होते ही जैसे सारे प्रश्न बदल जाएंगे, आदमी भी बदल जाएगा। यह नाटक की कमजोरी है जो प्रस्तावना से अंत तक बहुत संगति नहीं बैठा पाती। प्रस्तावना में काला सूट वाला कहता है, मेरे होने से ही सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित है, जबकि नाटक में क्या ऐसा लगता है? क्या सावित्री ही अंत तक मूल्य का निर्धारित अनिर्धारित करने वाली नहीं हो जाती? राकेश ने एक ही अभिनेता से पांच भूमिकाएं करने का आग्रह किया है। इससे सैद्धांतिक व्यावहारिक कई तरह की बाधाएं सामने आती हैं। राकेश का इसमें शायद दोहरा लक्ष्य है, एक हर आदमी एक जैसा दिखना, दूसरा रंगमंचीय सुविधा का ध्यान। लेकिन ऐसा सफलतापूर्वक निभाया नहीं जा सकता है। नाटक में एक ही आदमी से हमारी भेंट कई बार नहीं होती। चारों पुरुषों का अपना अलग-अलग निश्चित व्यक्तित्व है, अपने प्रयोजन, अपना अपना पेशा, अपने अपने मार्ग हैं। वे एक ही व्यक्ति के विभिन्न रूप बनकर नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में नाटकीय संवेदना के संप्रेषण में इस नवीन प्रयोग से विशेष फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे नाटक के सहज स्वाभाविक विकास में उसके औचित्य में रुकावट आई है। नाटक का अंत संभवतः इसी युक्ति के कारण बिगड़ गया। पृष्ठ संख्या 98। नाटककार ने इसी फेर में पढ़कर सावित्री की महेंद्रनाथ से सीधी टकराहट नहीं कराई, ब्रैकेट में जो ज्यादा सार्थक प्रभावपूर्ण होती, ब्रैकेट क्लोज, जुनेजा के माध्यम से पैदा कराई है। जुनेजा के चरित्र की सार्थकता, महत्ता और अनिवार्यता भी उससे उजागर नहीं होती, और प्रत्यक्ष अनुभव के सुख का क्षण भी हाथ से निकल जाता है। उल्टे सारे नाटक की गति द्वंद खत्म होता जाता है। जैसे ही जुनेजा सावित्री के बीच सूचनाओं और उद्घाटन का क्रम चलता है, चरम बिंदु पर आकर नाटक जितना तीव्र, तीखा, सूक्ष्म अनुभव से जुड़ा होना चाहिए था, उद्घाटन प्रक्रिया के कारण उसमें उतना ही ठहराव और सपाटपन आ जाता है। इसीलिए नाटक की बुनावट भी बिगड़ती है। यही नहीं, अंत में जुनेजा का संभल कर महेंद्रनाथ संभल कर कहते निकल जाना और फिर महेंद्र बनकर वापस आ जाना भी इतना बनावटी लगता है। साधारण नाटकों की कल्पना जैसा कि प्रबुद्ध दर्शक को झिंझोड़ने वाला यह नाटक सहज अनुभव की सच्चाई से कट जाता है। इसके अलावा इन चारों पुरुषों में से किसी एक को भी निकाल दें, खासकर सिंघानिया और जगमोहन को, तो क्या नाटक के कार्य, व्यापार और दर्शन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तभी यह लगने लगता है कि राकेश ने यह प्रयोग एक नाटकीय युक्ति के रूप में नए प्रयोग के चक्कर में पड़कर किया है। अगर वे इस प्रस्तावना को नाटकीय अनुभव से जोड़ सके होते और चारों पुरुषों को एक ही पुरुष द्वारा चारों भूमिकाओं को खेले जाने की एक अनिवार्य स्थिति के रूप में ला सके होते, तो उसका औचित्य और नवीनता, मौलिकता की बात समझ में आती। लेकिन सचमुच अगर चार अभिनेता चार पुरुषों का अभिनय करें, ब्रैकेट में और कुछ प्रदर्शनों में यह प्रयोग किया भी गया है, नाटक के प्रश्न पर उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, ब्रैकेट क्लोज, तो भी नाटक के कथ्य और विचार तत्व में, चरित्र संघर्ष में कोई फर्क नहीं आएगा। वस्तुतः राकेश के मस्तिष्क में आधे अधूरे शीर्षक के अनुसार सभी लोगों का अधूरापन समान रूप से विद्यमान था। इसीलिए ऐसा उन्होंने पूरी सतर्कता से किया है। इसीलिए काले सूट वाले आदमी को पूरे प्रकाश में रखा है। पति वाली शक्ल से जानबूझकर पहचान कराई गई है, हालांकि उसे काली छाया की तरह अस्पष्ट भी रखा जा सकता था और तब प्रस्तावना नाटक से उतनी अलग न लगती। व्यावहारिक दृष्टि से भी एक ही अभिनेता से कई भूमिकाएं कराना एक कठिन काम है। हिंदी रंगमंच की अपनी सीमाएं भी हैं। देश भर में उतने सक्षम अभिनेता का मिलना भी कठिन है। इस हालात में प्रदर्शन में नाटकीय अर्थ और अधिक सतही हो जाने का डर है। नाटककार के सब कुछ अपने हाथ में लेने की बात इसीलिए कही गई है और यह भी कि अच्छा होता यह निर्देशक के ऊपर छोड़ दिया गया होता। प्रस्तावना का एक रंग युक्ति बनकर रह जाना जहाँ खटकने वाली बात है, वहाँ नाटक की सचेतन अनुभूति के लिए दर्शकों को तैयार करने की दृष्टि से इस प्रस्तावना का उद्देश्य निश्चय ही महत्वपूर्ण है। पहले तो प्रस्तावना के द्वारा नाटक और नाटककार दर्शक समूह से सीधे टकराता है। नाटक रंगमंच, रंग भवन और दर्शक को निकट लाता है, पारस्परिक संबंध का भाव पैदा करता है। पृष्ठ संख्या 99। जैसे दर्शक कोई अलग अमूर्त स्थिर इकाई नहीं है, वह भी नाटक का एक जीवंत हिस्सा है, बराबर का साझीदार, ब्रैकेट में इसका निर्वाह न हो पाना अलग बात है, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रेक्ट के निरपेक्षता सिद्धांत के अनुसार यह प्रस्तावना दर्शक को आलोचनात्मक दृष्टि देने की एक ऐसी कोशिश भी है कि दर्शक कहीं भावमग्न न हो, बल्कि सारी सतर्कता, बुद्धि, विचार और आलोचना के साथ देखता रहे। उसे लगे कि हम अपनी ही असली जिंदगी नहीं देख रहे हैं, जीवन के बदलते रंग देख रहे हैं। लेकिन प्रस्तावना अपने दोषों के कारण उस सिद्धांत को पूरा नहीं कर पाती और मात्र नवीनता बनकर रह जाती है। नेमीचंद्र जैन ने इसीलिए इसे युक्ति का आडंबर और काले सूट वाले आदमी को एकदम निरर्थक, अनावश्यक, बल्कि खिंचाने वाला आडंबर या तिकड़म जैसा कहा है। फिर भी अपनी खामियों के बावजूद यह प्रयोग नाटक की नई शैली की खोज का परिचायक है। आधे अधूरे में कथ्य और शिल्प की ये कमजोरियां हैं। उसका विषय क्षेत्र भी व्यापक नहीं है, सीमित है, कोई विशद समस्या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका बहुत महत्व है। इसने हिंदी नाटक और नाट्य भाषा को समकालीन अर्थ में प्रासंगिक और सक्षम बनाया है। विषय वस्तु नई न होते हुए भी उसका प्रस्तुतिकरण नयापन लिए हुए है। शिल्प संबंधी या अभिव्यक्ति की कमियां हैं भी तो अधिकतर वे अनुभव और परिवेश के सीमित होने के कारण। अन्यथा यह नाटक आज के यथार्थ को सीधे आज की चुभती व्यंजक भाषा में तो प्रस्तुत करता ही है, साथ ही हिंदी के यथार्थ परक रंग शिल्प की विकास दिशा दिखाता है। राकेश ने इसमें मंच रूढ़ियों को, बनावट को एकदम उपेक्षित किया है और रंग शिल्प में भी आंतरिक समझ, संवेदनशीलता और उससे उत्पन्न स्वाभाविक प्रवाह की मांग की है। यह हिंदी रंगमंच के लिए महत्वपूर्ण नाटकों की एक कड़ी है। इसने रंग जगत और नाट्य जगत में जितनी हलचल और सक्रियता, जागरूकता और आलोचनात्मक दृष्टि पैदा की है, वह महत्वपूर्ण शुरुआत है। कोरी व्यावसायिकता और पाठ्यक्रमीय दृष्टि से हटकर यह नाटक नाट्य लेखन और रंगमंच दोनों के लिए एक प्रेरणा है। अभिनव पद्धति में भी यह नई शैली की मांग करता है। आंगिक क्रियाओं के स्थान पर आंतरिक भाव के सूक्ष्म संयमित प्रकाशन पर बल देता है। साथ ही रूप सज्जा, वेशभूषा सभी स्तरों पर यथार्थ और सहज स्वाभाविकता को महत्व देता है। दर्शक समूह को जड़ता आलस्य से मुक्त करके उसका मोह भंग करके उसे सचेत साझीदार बनाना चाहता है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। यह जो भी है हिंदी के लिए बहुत नया, बहुत आगे है, इसीलिए कोई बहुत बड़ी सृजनात्मक उपलब्धि या एकदम युगांतकारी उपलब्धि न होते हुए भी आधे अधूरे एक उल्लेखनीय कृति है जो महत्वपूर्ण भी है। निसंदेह यह नाट्य कृति नाटक को बहुत भिन्न और विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रेरणा देती रही है। राकेश के नाटकों ने हिंदी नाटक को इतना आगे पहुंचाया है और समीक्षकों की दृष्टि से भी इतनी बदल है कि आधे अधूरे तक आकर नाटक को एक विधा के रूप में परखने की सारी दृष्टि ही बदली हुई मिलती है। पृष्ठ संख्या 100। क्या यही कारण नहीं है कि इस नाटक पर इतनी और इतनी विरोधी प्रतिक्रियाएं हुई, इतने प्रयोग हुए? बड़ा प्रेक्षागृह और खुला रंगमंच दोनों पर समान रूप से सफल यह नाटक पुरस्कृत ही नहीं होता रहा, तरह तरह की चर्चाओं का विषय भी बनता रहा है और खुली बहस को, विचार विनिमय को, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित भी करता रहा है, और नाटक को फिल्म और टेलीविजन से जोड़ने का कार्य भी इसने किया है। आधे अधूरे पर फिल्म भी बन रही है, इसमें नाटक का ही पूरा दल ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, दिनेश ठाकुर, ऋचा व्यास, अनुराधा कपूर हैं। आधे अधूरे हिंदी के दो चार श्रेष्ठ नाटकों में से एक, समकालीन सच्चाई के एक स्तर का महत्वपूर्ण नाटक है।